देखते हैं इसकी तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मूसा अलैहि सलाम की बात से मिसाल दी गई। वलकद आतेना मूसा तिसा आयात, और अलबत्ता तहकीक मूसा अलैहि सलाम को हमने 9 निशानियां दी। कैसी निशानियां थी? वो बैनात थी, रोशन निशानियां थी। मूसा अलैहि सलाम को तो काफी निशानियां दी गई, लेकिन खास निशानियां जो फिरौनियों के लिए के सामने लाके दिखाई गई, उनमें 9 निशानियां क्या थी? आसा था, यद बैदुआ था, जो हाथ रोशन, फिर उस तरह जादूगरों को शिकस्त देना था, उनके सामने ही हुआ था। फिर समुंदर का फट जाना, फिर कहत साली, फिर तूफान, फिर टिड्डियां, जुए, मेंढक, खून, इनका जिक्र सूरह आराफ में भी आ चुका है, हम पढ़ चुके। ये उनके सामने दिखाई गई, वाजे थी इनके सामने। फसल बनी इसराइल, बनी इसराइल से पूछ लो, फर्क तो पता है ना बनी इसराइल और फिरौनियों के अंदर, किब्तियों के अंदर। तो मूसा अलैहि सलाम जो तिसा आयात लाए थे ना, वो किब्तियों के लिए लाए थे। बनी इसराइल तो पहले से मुसलमान थे, तो उनको फिरौनी, उनको हमको किब्ती कहते, तो उनके लिए लेकर आए थे कि वो ईमान ले आए। तो बनी इसराइल से पूछ लो, इस जा हम जब मूसा अलैहि सलाम आए थे, यानी उनके पास निशानियां लेकर आए थे, फ़काला लहू फिरौन, तो कहा उसको, किसको, हु की जमीर किस तरफ जा रही है? मूसा अलैहि सलाम की। तो उसको, मूसा अलैहि सलाम को कहा फिरौन ने, इन्नी ला अज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, कि ए मूसा, मुझे तो तू सहर ज्यादा लगता है, जिसके ऊपर जादू किया। यानी ऐसे जब इंसान के ऊपर जादू हो जाता है, तो वो बहकी बहकी चीजें करता है, वो अपनी सेंसेस में नहीं होता। तो उसका ये मतलब था कहने का कि मुझे तो लगता है कि तेरे ऊपर जादू हुआ हुआ। अब देखें, बजाय इसके कि इन निशानियों को मान के ईमान लाने के, वो क्या कह रहा है? ये बात यहां पर क्यों बताई गई? ये इसलिए बताई गई कि आप देखें, आज का जो हमने सबक स्टार्ट किया है, तो हमने पढ़ा कि मुशरिकीन ने मक्का ने निशानियां मांगी थी कि आप हमें ये निशानियां दिखाएं। तो उनको बताया गया कि तुम अपनी कुव्वत और सरदारी और अपनी ताकत के इतना तुम्हें घमंड है, और तुम निशानियां मांग रहे हो कि हमें निशानी दिखाओगे तो हम ईमान लाएंगे, वरना हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। तो अपने से पहले याद करो, एक फिरौन भी था जो सिंबल था ताकत का, कुव्वत का, तकब्बुर का। उसके सामने तो इतनी निशानियां आई, 9 निशानियां आई, वाजे निशानियां आई, बिल्कुल क्लियर थी, बैनात थी, वो तो फिर भी नहीं मानना। तो तुम बताओगे, तुम क्या मानोगे फिर? फिरौन नहीं माना, उसको भी निशानियां दिखाई गई, तो तुम कहां मानोगे? वो भी बड़ा मुतकब्बिर था। तो फिर लेकिन देखो उसका हाल क्या हुआ, जब उसने निशानियों को नहीं माना। वो तो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, तो ए मुशरिकी ने मक्का, तुम भी निशानियों को मांग तो रहे हो, मगर निशानियां देख कर कोई ईमान लाना होता किसी ने, तो फिरौन ईमान ले आता, वो भी ईमान नहीं लेकर आया था। और ये बात तुमने पूछनी है तो बनी इसराइल से पूछ लो, यहूदियों से पूछ लो। काला, उसने कहा, लकद अलिंत मा अंजला हा उलाए इल्ला रब समावाती वल अर्दी बसवायर। काला, उसने कहा, किसने कहा? मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन को ये जवाब दिया कि तू जानता है कि ये मा अंजला हा उलाए, नहीं उतारा इन निशानियों को किसने, मगर रब समावाती वल अर्द ने, मैं खुद नहीं लेकर आया हूं ये निशानियां, तुझे अच्छी तरह पता है। वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो मूसा अलैहि सलाम को जानता था। तो ये जान ले कि ये निशानियां मैं खुद नहीं लाया, बल्कि ये रब्बु समावाती वल अर्द की तरफ से है, और बसायर हैं, ऐसी हैं कि ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने भेजी, बल्कि बतौरे निशानी, बतौरे दलील भेजी है। इस चीज की, किस चीज की दलील के तौर पे भेजी है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे में, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, अल्लाह के नबी हैं। वा इन्नी ला अज़ुन्नुका या फिरौन मसबूरा, और बेशक अलबत्ता मैं गुमान करता हूं कि ए फिरौन तू हलाक होने वाला है। अब ये बात फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब कही थी कि तू सहर ज़्यादा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जैसे फिरौन कह रहा ना, फिरौन को यकीन है कि मैं तो यकीन रखता हूँ कि तू सहर ज़्यादा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा यकीन ये है कि तू हलाक होने वाला है। अल्लाह अकबर। तो ये मुकालमा मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के साथ हुआ था। क्योंकि जब किसी ने बात ना माननी हो ना, तो फिर आगे से वो यही कहता है कि तुझे पर तो जादू है, तेरे ऊपर तो ये है, तुम क्या बेकी बातें कर रहे हो, अजीब बातें कर रहे हो, ताकि दूसरे की इम्पोर्टेंस को कम कर दे। तो फिरौन ने फिर कहा, फरौद फिर उसने इरादा किया फिरौन ने, अयस्तफिज़हुम मिनल अर्ध, कि वो उखाड़ फेंके इनको जमीन में। और आज भी जो फिरौन जैसे लोग होते हैं ना, जिनको अपनी ताकत का बड़ा घमंड होता है, उनके पास जब हक बात लाई जाती है तो अब क्या करें, उनके पास कोई दलील तो होती नहीं कि माने, तो धमकियों पे उतर आते हैं। और उनको ये होता है कि हम इनको निकाल देंगे, जिला वतन कर देंगे, हम इनको एक्सपेल कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, फलां कर देंगे या खत्म कर देंगे। तो इस्तिफ़ज़ाज़ क्या होता है, किसी को हल्का समझ के उठा के फेंक देना, बाहर फेंक देना, और चाहे इसको जिला वतनी भी कह सकते हैं या मार देना भी कह सकते हैं, दुनिया से भी निकाल देना या उस जगह से निकाल देना, दोनों ही बातें हो सकती हैं। और आपको पता है कि मुशरिकीन ने मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही प्लान कर रहे थे, और ये बात पहले भी आ चुकी है, जब हमने आयत 76 में देखा था कि आप उसमें देख सकते हैं, उसमें भी यही लफ्ज आया, और यही आया कि अहले ईमान के लिए कि वो ऐसा ही चाहते थे, इनकी ये ख्वाहिश थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी और अहले ईमान के, इनको या तो जिला वतन कर दें या इनको मार ही दें, क्या कर दें, कत्ल कर दें। और आप ये भी देख चुके हैं कि इबलीस के बारे में भी यही बात आई है, यही लफ्ज जो है ना इबलीस के बारे में आया, कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अपने प्यादे और अपने सवार इनके ऊपर चढ़ा दे, इनको हल्का समझ के, और इनको उखाड़ दे तो जमीन से अगर तू कर सकता है। तो इबलीस ने भी यही काम किया, वो भी अहले ईमान को उखाड़ देता है, वो भी अहले ईमान के साथ यही करना चाहता है, और यही फिरौन करना चाहता था, और यही मुशरिकीन मक्का करना चाहते थे, और यही तमाम ऐसे लोगों का जो इबलीस की वाली खसलत रखते हैं, वो अहले ईमान के लिए भी ऐसा ही चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसने ये इरादा किया, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सका। उससे पहले ही फअग़रकना हुआ मम्माहु जमिया, तो हमने उसको गर्क कर दिया, और जो उसके साथ थे सारों को हमने गर्क कर दिया। और इसी तरह आप देखें कि उन्होंने इरादा किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बचा लिया, लेकिन उसके बाद बदर में इनके बड़े बड़े सरदार कैसे कत्ल हो गए थे। वकुलना मिन बादिही, और हमने कहा इसके बाद, किसके बाद, फिरौन के गर्क होने के बाद हमने कहा ली बनी इसराइल, बनी इसराइल से जो जो मूसा अलैहि सलाम की कौम थी, इनसे कहा उसकुनुल अर्द, तुम अब रहो बसो जमीन में। ये कौन सी जमीन थी, बाज कहते हैं मिस्र की, बाज जगह पे आपको लिखा मिलेगा फलस्तीन की, क्योंकि इसके बाद जब मूसा अलैहि सलाम इनको लेकर समुंदर से पार चले गए थे, और फिर काफ़ी अरसे तक ही आपको पता है 40 साल तक उसी मैदान में घूमते रहे, और फिर अल्लाह ताला ने इनको दाखिल होने दिया फलस्तीन में, और उसके बाद यहाँ पे इनकी हुकूमत हुई। तो फलस्तीन भी मुराद हो सकता है कि बस जाओ फलस्तीन में, या फिर दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर इन्होंने दोबारा मिस्र का कब्जा इनको मिल गया था, तो ये वहां पे भी रहे थे, तो वहां भी मुराद हो सकता है, बाहर क्या जहां पे भी, मगर इनको कहा गया कि फिर रहो बसो जमीन के अंदर। फइजा जाअ वअदुल आखिरती जिना बिकुम लफीफा, तुम जमीन में फैल जाओ रहो बसो, जब वादा आखरा का आएगा आखिरत का, तो हम तुम्हें लपेट लेंगे, जमा कर लेंगे। तो एक तो इसका मतलब सिंपल जो मतलब है कि कयामत का जब वादा आएगा तो जहां पे भी बनी इसराइल होंगे अल्लाह ताला सबको जमा कर लेगा, लेकिन वो तो सबको ही करेगा, अल्लाह ताला सारी इंसानियत को करेगा, तो इसमें बनी इसराइल की फिर क्या बात आ गई। तो दूसरा माना ज्यादा दुरुस्त लगता है कि जिसमें ये है कि यानी जब कयामत का वक्त करीब होगा, उस वक्त पूरी दुनिया से तुम्हें लपेट लिया जाएगा, एक जगह कर दिया जाएगा। यानी जैसे आप कचरा ब्रूम से आप इकट्ठा कर लेते हैं ना, झाड़ू देते हैं, एक जगह जमा कर लेते हैं, फिर आप उसको उठाते हैं, उसी तरह इनको एक जगह जमा कर लिया जाएगा, फिर उठाया जाएगा। क्यों? इसलिए आप देखेंगे जिस कौम ने भी अपने रसूल को झुठलाया, अल्लाह ताला ने रसूल को तो बचा लिया मगर उस कौम को सफाए हस्ती से मिटा दिया। मगर यहूद के मामले में ऐसा नहीं हुआ, आप देखते हैं इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से तो सूली चढ़ा दिया हुआ ना, वो तो अल्लाह ताला ने उठा लिया, बचा लिया ईसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन इन्होंने तो सूली चढ़ा दिया था। अब ये यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये किया, उनको झुटलाया और उनको सूली चढ़ाने का इरादा कर लिया और अपनी तरफ से चढ़ा भी दिया, तो अब ये कौम तो सफा हस्ती से नहीं मिटी, ना ये तबाह हुई, इनके साथ फिर क्या हुआ? तो इनका जो फैसला है वो पेंडिंग है, अभी इनका फैसला होना है, इनके साथ भी वो ही सलूक है, लेकिन अभी इनको कुछ इंटरवल दिया गया, कुछ मोहलत दी गई है, और ये इम्प्लीमेंट कब होगा? जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जाहिर है ये तो दुनिया में पूरी में फैले होंगे, तो कैसे एक एक जगह पे उनको तो जाके नहीं मारा जाएगा, बल्कि जब इनका ये वक्त आएगा ना, कयामत का वक्त करीब होगा और इनका अल्लाह ताला ने जो इनके ऊपर अजाब भेजना है उसका वक्त करीब होगा, तो इनको पूरी दुनिया से एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक कभी भी इनको इंडिपेंडेंट रियासत नहीं मिली थी, इंडिपेंडेंट स्टेट इनको कभी भी नहीं मिली, ये कभी कहीं किसी मुल्क में, कभी यूरोप में बसे, कभी कहीं बसे, कहाँ कहाँ जाके इन्होंने पनाहें ली, लेकिन इनका अपना इंडिपेंडेंट कोई भी मुल्क नहीं था, सिवाय अब जाके ये पिछली सदी के अंदर इनको एक मुल्क मिला, और इसके बाद ये सब पूरी दुनिया से इस मुल्क में इकट्ठे होने शुरू हो गए। इससे पता चलता है कि ये जो वादे का वक्त है वो करीब है, क्योंकि इन्होंने दज्जाल का मददगार बनना है, और ईसा अलैहिस्सलाम आके दज्जाल को भी कत्ल करेंगे और इस्लाम का गलबा भी होगा, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को खत्म कर देंगे, और ये यहूदी भागेंगे और दौड़ेंगे और इनको कोई छुपने की जगह नहीं मिलेगी, हत्ता के किसी दरख्त के पीछे भी ये पनाह लेने की कोशिश करेंगे तो वो दरख्त बोल पड़ेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको मार दो, सिवाय गरकत के दरख्त के, मैंने आपको बताया था गैन रौ कौफ दाल, इस दरख्त के सिवा, वो इस दरख्त के पीछे, ये दरख्त ना एक झाड़ी की तरह का दरख्त है, बहुत ऊंचा नहीं होता, तो इसके पीछे कोई यहूदी छुपेगा तो ये नहीं बताएगा, ये यहूदी को पनाह देगा। इसीलिए इसराइल में आप देखें कि गरकत के दरख्त की सबसे ज्यादा काश्त हो रही है। ठीक है, तो यहां पे उनकी भी बात हो रही है और कुरैश के सरदारों को भी सुनाया जा रहा है कि जब अल्लाह के किए हुए वादे बनी इसराइल का पीछा कर रहे हैं आज तक, और वो तबाह होके रहेंगे जिन्होंने रसूल को झुटलाया, तो तुम बताओ तुम झुटलाओगे तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अरसे की इनको मोहलत मिली, वरना तो इनको उसी वक्त ही ये खत्म हो जाना चाहिए था, कि जो वहां पे जब इन्होंने ईसा अलैहि सलाम के साथ ये करने का किया था, तो जैसे दूसरे पैगंबरों के साथ जब भी ऐसा करने का हुआ तो कौमें तबाह हो गई, तो अल्लाह ताला का ये तरीका रहा है, लेकिन इनको सिर्फ अल्लाह ताला ने मोहलत दी। वबिल हक अनजलना हुआ बिल हक नजल, और हमने उतारा इसको हक के साथ और हक के साथ ही उतरा। क्या मतलब है इसका? हक के साथ ही उतारा और हक के साथ ही उतरा मतलब, यानी ऐसा नहीं है अल्लाह ताला ने हक के साथ उतारा और वैसा वो उतरा भी हक के साथ, यानी अल्लाह ताला ने जो इरादा किया, जो अमल किया, वो वैसे ही हुआ। अल्लाह ने नाजिल किया उस तरह ही नाजिल हुआ भी। ना होता ना, मैं तो कोई कोशिश करूं और वो, लेकिन वैसा रिजल्ट ही ना आए, हुआ नहीं वैसा, तो वो एक मेरी कमी है। लेकिन अल्लाह ताला ने जैसा चाहा इसको कि ये हक के साथ नाजिल हो, वैसे ही ये हुआ। यानी इसके अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये प्रिजर्व्ड है। किसी तरह को भी कोई शको शुभा आपके दिल में नहीं आना चाहिए कि पता नहीं अल्लाह ताला ने नाजिल तो किया था, क्या पता रास्ते के अंदर इतने शैतान थे, ये थे, हो सकता किसी ने उचक लिया। नहीं, इसीलिए फरमाया जो अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो ऐसा फरिश्ता था बीच में जो रूह अल अमीन जिनको कहा जाता है, अमानतदार फरिश्ता। हालांकि कौन सा फरिश्ता है जो अमानतदार नहीं है? हर फरिश्ता ही अमानतदार है, क्योंकि फरिश्तों में तो ताकत ही नहीं, कुदरत ही नहीं। मैंने बताया ना आपको, कोई नाफरमानी करने की तो उनमें ताकत नहीं है, तो सारे फरिश्ते ही अमानतदार। मगर किस लिए ये कहा गया रूहुल अमीन? ताकि यकीन हो जाए कि याद रखो ये फरिश्ता बहुत अमानतदार फरिश्ता है, जिसके जरिए अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा, और जी कुव्वत वाला भी है, ऐसा नहीं कि उसे कोई छीन के ले जाए, मुता है। इतनी अल्लाह ताला ने सिफात बयान फरमाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, तो तुम ये नहीं कह सकते ए कुरैश कि जो शुभात तुम डाल रहे हो कि ये पता नहीं कहीं से सुन के आ गया, किसी से पढ़ के आ गया, इसने ये खुद ही बना लिया। आज भी मैंने किसी को सुना तो मैं हैरान हो गई, या अल्लाह, यानी उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, ये मोहम्मद ने खुद लिखा हुआ है, ये उन्होंने कहा। मैं सोच रही थी कि ये भी आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो पीछे जो वसवसे डालने वाला वो तो सेम ही है ना, शैतान। तो यहां से हमें ये एक प्रूफ मिलता है कि ये कलाम भी हक है, ये किताब हक है, इसमें सब कुछ सच है, अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई चेंज नहीं हुई, इसको मान लेने में ही हमारी भलाई है। और वमा अरसलना का इल्ला मुबशिर व नजीरा, और नहीं हमने भेजा इसको मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशीर और नजीर बना के भेजा है। बशीर किसके लिए? उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, उनके लिए खुशखबरियां सुनाने वाला, और जो कुफर करते हैं उनको डरावे देने वाला, वरवॉन कर देने वाला। तो समझ आ गई यहां से कि एज इट इज अल्लाह ताला की बात हम तक पहुंची हुई है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिवाय मुसलमानों के किसी के पास ऐसा कलाम नहीं है जो एज इट इज उनके पास आज तक महफूज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपको पता है कि उनको तो नबुव्वत से पहले भी लोग सादिक और अमीन कहते थे। तो इस किताब की हर बात अल्लाह की तरफ से, इसका हर हुक्म अल्लाह की तरफ से, इसमें कभी शक ना करें, ठीक है? और ये भी कि हक है, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गलत हो, सब सही है। लेकिन देखिए ना, आज मुसलमानों का भी ये हाल है ना कि वो आप एक जहाज में बैठते हैं ना, तो जहाज उड़ाने वाला एक पायलट है, हम उस जहाज में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि हमें यकीन है कि ये पायलट हमें मंजिल तक पहुंचा देगा, इसीलिए तो हम अपनी जान का रिस्क लेके उसमें बैठे हैं और आराम से बेफिक्र होके बैठ जाते हैं। मगर एक रब पे हमें उतना भी एतमाद नहीं है जितना एक पायलट पे, उतना भी ट्रस्ट नहीं है कि वो हमें कभी गलत बात नहीं बताएगा, गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएगा। उसने जब कहा है कि मैं इस किताब पे चलोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, ये जन्नत का रास्ता है, तुम्हारी तुम्हारी मंजिल जन्नत तक पहुंचा दूंगा, तो हमें उस पे यकीन नहीं है? क्या वो कभी हमें कोई गलत हुक्म दे सकता है? एक इंसान है। हमने कभी आज तक हम में से किसी ने जाके पायलट से ये नहीं पूछा तुम्हारी क्वालिफिकेशन, कितने कितने साल से तुम जहाज उड़ा रहे हो, क्या तुम्हारा तजर्बा है, क्या तुम्हारी डिग्री है, क्या है, कितना एतमाद है ना उसके ऊपर कि जिधर लेकर जा रहा है खामोशी से हम उसके साथ चल रहे हैं, बड़े सुकून से चल रहे हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला हमें जिस तरफ ले जाना चाहता है इस कुरान में, इस कुरान के जरिए जिस तरफ को, जिस डायरेक्शन में हमारी जिंदगी को लेकर जाना चाहता है, हमारे इतने सवाल आते हैं, हमारे इतने तराज आते हैं, हम इतनी दफा ना करते हैं। फिर आप देखिए पायलट जिस स्पीड पे चलाए, जिस हाइट पे लेकर जाए जहाज, हम नहीं कभी एतराज करेंगे, हमें पता है ये हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, इसलिए नहीं एतराज करते ना। लेकिन हमारा रब हमें एक से दूसरा हुक्म दे दे तो हमें ये हो जाता है, हाय ये क्यों, अब ये भी हम करें, हाय अब ऐसे भी हम चलें। अल्लाह अकबर। हम फिर भी ये सोचेंगे हमने अपना नफा नुकसान भी खुद देखना है, हमें खुद पता है आज की सेंचुरी में कैसे रहना है, हमें नहीं परवाह के कुरान क्या कहता है। याद रखिएगा फिर ये कुरान के जो अल्फाज हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, हर हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें से आगे ये कहना मैं सोचूंगी, मैं देखूंगी, अभी तो मैं मशवरा करूंगी, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है आजकल, तो फिर ये है कि इसका मतलब है कि भरोसा ही नहीं कि ये अल्लाह की तरफ से। जब ऐसे क्वेश्चंस करें जो इतराजात हैं तो वो फिर क्या मतलब है, क्या फिर वाकई हमें यकीन है कि अल्लाह की तरफ से है, ये हुक्म क्यों आया, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर फिरौन ने इस किस्म के सवालात किए थे तो मूसा अलैहि सलाम तो फरमा रहे हैं कि तुम हलाक होने वाले, जब उसने इतराजात किए। और क्या उसके बाद के लोग दीन के ऊपर ऐसे इतराजात करने के बाद हलाकत से बच सकते हैं? अल्लाहु अकबर। वकुरआनन फरकनाहु लितकराहु अलन नास, ये कुरान हमने अलग अलग करके यानी ऐसे फर्क फर्क करके नाजिल किया ताकि तुम इसको पढ़ सको, आला मुक्सिन आयस्तगी के साथ, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को, इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसे फर्क फर्क करके, फर्क फर्क करके मतलब है कि यानी थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा, ये भी मतलब है। वनज़लनाहु तंजीला, नाजिल किया हमने इसको तंजील के साथ, नज़लना नज़ला युनज़िलु तंजील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, वक्फे वक्फे से। देखें आप के लौहे महफूज से आसमाने दुनिया तक तो इंजाल हुआ है, अनजला कहते हैं एक दफा उतारने को, और नज़ला कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उतारना। तो 22 साल और कुछ महीने यानी तकरीबन राउंड ऑफ अबाउट 23 साल कह देते हैं, तो 22.5 साल, 23 साल कह दें आप, उतने में उतरा, इतना अरसा लगा, एक दफा क्यों नहीं उतर गया, उनको भी ये एतराज होता था एक दफा क्यों नहीं उतर गया। इसके पीछे भी हिकमत थी, ली तकराहु आलन नास, ये हिकमत यहाँ पे एक बताई गई ताकि आप लोगों पे पढ़े आए आला मक्स मुक्स मुक्स के साथ यानी आयस्तगी के साथ, ठहर ठहर के, ताकि क्यों ठहर ठहर के, क्यों एक दफा ही क्यों नहीं सारा सुना देते लोगों को। देखिए जो आहिस्ता आहिस्ता करके बात बताई जाती है वो ही एब्जॉर्ब भी होती है। अब आपको सारा कुरान एक ही हफ्ते में पढ़ा दिया जाए, एक ही महीने में पढ़ा दिया जाए, जैसे हम दौरे कुरान में करते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं होती ना कि पूरी तरह बात समझी जाती, बस एक ऊपर ऊपर से ही समझा जाता है। इस तरह जैसे अब हम डेप्थ में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, वो नहीं हो सकता। फिर अमल भी तभी हो सकता है जब थोड़ा थोड़ा करके आए, एक दफा आपको ओवरलोड कर दिया जाए। अब लोग सारे लोग दौरा कुरान को समझते हैं कि बस हमने दौरा कर दिया ना कुरान का, तो बस कुरान हमने सीख लिया सारा, हालांकि अमल उसके बाद कितना बदला, नहीं बदलता ना, क्योंकि एक ही दफा इतनी तेजी में आपसे गुजरा जा रहा है, बस एक एक दफा समझने, एक रिविजन तो वो हो सकती है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमें अमल बदलने के लिए मुझे सारा कुछ समझ आ गया। वो अमल आसान तभी होगा जब थोड़ा थोड़ा करके आए, और कुरान इसी तरह उतरा مکی صورتیں ہیں، توحید کو مضبوط کیا گیا، پکا کیا گیا، آخرت کے ایمان کو پکا کیا گیا، رسالت پہ ایمان کو پکا کیا گیا. پھر مدنی صورتیں آپ دیکھیں، ان میں احکامات دیے گئے، کہیں شراب کے، کہیں سود کے، کہیں پردے کے، کئی اور چیزوں کے احکامات آئے، کیسے اپنی معاشرتی زندگی گزارنی ہے، سب چیزوں کے احکامات بعد میں دیے گئے تاکہ آسانی ہو. تو ایک گریجولی، ایک سسٹمیٹیکلی ہوا، کون سی چیز پہلے کون سی بعد میں، اس طرح سے ہوئی، وقفے وقفے کے ساتھ ہوئی، تب لوگوں کے لیے آسان ہو گیا عمل کرنا. اور دیکھیں اس طرح سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرق فرق کر کے کرا کہ سورتیں اتارتی، آیتیں اتاری. یہ آیتیں اور سورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری. ہاں، جو پارے ہیں، پاروں کی تقسیم انسانوں نے بعد میں خود کی، رکوعوں کی تقسیم خود کی، لیکن آیتیں اور سورتیں 114 سورتیں ہیں اور 6236 تقریباً آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو ایسے میں ایک ہی جملہ ہوتا جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتا اور ناس پہ ختم ہوتا، تو کتنا مشکل ہوتا، پڑھنا بھی مشکل ہوتا، حفظ کرنا بھی مشکل ہوتا، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے لیے آسانی کر دی، واضح کر دیا، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر بیان کیا، تاکہ آپ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو آگے پڑھ کے سنائیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تنزیل ہے، یہ یعنی آہستہ آہستہ کر کے ہوا، حالات کے مطابق. وہی پھر چیزیں زیادہ بھی اثر کر رہی تھیں لوگوں پہ، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے بعد میں بھی تعلیم کا، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے. ایسے نہیں ہے کہ ایک ایک پارا ہر دن کر رہے ہیں، تیزی سے کر رہے ہیں، بس صبح کر رہے ہیں، شام کر رہے ہیں، بس لوگوں کو سنا دیا، بس اپنے سر سے اتار دیا. نہیں، اب دیکھیں آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ابزارب کریں، اس کو اور غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کی بھی کوشش کریں. قل آمنو بھی او لا تؤمنو، کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس کے ساتھ یا نہ تم ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کے قرآن کو کوئی فرق پڑتا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پتہ نہیں کوئی کمی ہو جانی. نہیں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم اس سے پہلے، اس سے پہلے کس سے، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے جو لوگ علم دیے گئے. کون لوگ تھے جو علم دیے گئے؟ یعنی جو اہل کتاب تھے، عیسائی اور یہودی. اذا یتلا علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر کیا آیتیں، اس قرآن کی آیتیں، اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، تو ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ یخرون للاذقان سجدہ، تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. جب ان کے سامنے یہ آیات رکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے ان کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے، وہ اس کلام کی عظمت سے گر پڑتے ہیں. اس کلام کو جب سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھیں واقعی قرآن پاک جب جن لوگوں کے آگے پڑھا گیا، انہوں نے اس کو سمجھا، جو لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے بہت سارے لوگ رونے شروع ہو جاتے ہیں. مسلمان ہوتے ہیں، روتے ہیں، کیا چیز ہے جو ان کو مل جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس، اس کا اس کی پہچان جب ہوتی ہے، اسلام لے کر آتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کھوئی بھی چیز مل گئی. تو یہ بھی اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں.